मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 21 अगस्त 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं न्याय व्यवस्था संबंधी या यू कह लीजिए न्यायपालिका संबंधी दो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करने जा रहा हूं। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। आइए पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं जिनकी संख्या भी आज काफी है। और ये जो खबरें हैं ये सच पूछिए तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल की न होकर के अखबारों की ज्यादा है। कल की न्यूज में आपने मनी लॉन्ड्रिंग की खबर सुनी होगी जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम अजी से जुड़ी हुई है। यहां हमारे लिए घटना किससे जुड़ी हुई है उसका कोई अर्थ नहीं है। दिमाग में ये बात स्पष्ट रखिए, आपको घटनाओं के तारों को समझने की और जोड़ कर देखने की जरूरत नहीं है। यहां इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग। और जो हाई कोर्ट ने जो बात कही कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपने आप में बड़ा अद्भुत उदाहरण है, चलिए ठीक है, वो किस तरीके का है उस जटिलता में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे तो जनरल स्टडीज मेंस का जो थर्ड पेपर है उसमें बकायदे ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है। जनरली बहुत कम ऐसा होता है कि टॉपिक मेंशन किए जाएं, मनी लॉन्ड्रिंग का टॉपिक मेंशन किया हुआ है। और ध्यान अगर से अगर आप उसे पढ़ेंगे तो यह टॉपिक आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टॉपिक नहीं है, बावजूद इसके कि यह धन से संबंधित है, यह टॉपिक सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो इसका कोई ना कोई संबंध आतंकवाद से भी होगा। जी हां, आतंकवादी जिस तरीके से धन संग्रहित करते हैं, फंडिंग उनकी जो होती है उसका एक पार्ट मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है। कुल मिलाकर ये दोस्तों कि इस टॉपिक पर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, कैसे होता है, देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग। एक बात जो मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती है, बस मैं आप लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड आप कह लीजिए कि चर्चा कर रहा हूं, इसके लिए हिंदी में धन शोधन शब्द का प्रयोग हो रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी सिविल सर्विस के पेपर में आप देखते हैं ना कि जो ट्रांसलेशन होते हैं तो धन शोधन शब्द का वहां प्रयोग हो सकता है। मुझे पता नहीं कैसे शोधन शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया। शायद लॉन्ड्रिंग, जैसे लॉन्ड्री होता है ना जहां हम अपने कपड़े वपड़े साफ कराने जाते हैं, तो उस तरह से शायद जोड़ करके देखा होगा कि मनी यानी कि धन और लॉन्ड्रिंग का मतलब शोधन। और अगर उस तरह से जोड़ करके देखें तो जो ब्लैक मनी है कह लीजिए उसको व्हाइट बनाने की एक कोशिश ही मनी लॉन्ड्रिंग है, तो एक तरह से शोधन भी किया जा रहा है। लेकिन चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में एक निगेटिव टर्म है इसलिए धन शोधन पता नहीं मुझे थोड़ा सा अजीब सा शब्द लगता है। लेकिन चलिए, अब न्यूज में है तो है, तो मैंने अपने मन की एक छोटी सी बात आपसे कही। दोस्तों, कल के NDTV चैनल पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो 9 बजे रवीश जी का आता है उसमें वस्त्र उद्योग पर था कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कैसे जबरदस्त रूप से संकट में आ गई है। देखिए, इससे पहले हमारे जो ऑटोमोबाइल उद्योग थे वो बहुत जबरदस्त रूप से संकट में आए, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब पिछले 3-4 महीनों से जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत जबरदस्त रूप से संकट में आया हुआ है। कहा जा रहा है कि लगभग 25 से 50 लाख लोग इस यहां से निकाले जा चुके हैं इस उद्योग से। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमारे देश के सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला ये क्षेत्र है। बहुत से टेक्सटाइल बंद हो गई हैं, कुछ ने अपना स्लो डाउन कर दिया है इस तरीके से। और ये बहुत चौंकाने वाली बात है क्योंकि अक्सर आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे मंदी की आशंका व्यक्त की जा रही है कि अर्थव्यवस्था में मंदी आने वाली है, तो ये उसके लक्षण है। और एक बात और भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण थी जो आपके लंबे समय तक काम आएगी, वो है कि भारत के बाजार में जो बांग्लादेश का कपड़ा है वो बहुत तेजी से आ रहा है और उसकी डिमांड बढ़ रही है और वो सस्ता पड़ रहा है। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि भारत जो टेक्सटाइल निर्यात करता था धागा वगैरह चाइना के लिए, तो चाइना ने उस पर अब टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए हैं और चूंकि भारत के माल पर टैक्सेस लगने लगे हैं तो चाइना में दूसरी जगह का माल आ रहा है, तो इसके कारण भी हमारा जो टेक्सटाइल उद्योग संकट में है। दोनों स्थितियों में हमारे पास अपने डोमेस्टिक मार्केट में उसकी डिमांड कम हो गई है, घरेलू बाजार में उसकी मांग कम हो गई है और साथ ही हमारा निर्यात भी घट गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य खासकर सितंबर एग्जामिनेशन के लिए। मित्रों, पर्यटन के ऊपर आज सरकार ने एक निर्णय लिया है या निर्णय लेने के बारे में सोच रही, बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड में ये खबर छपी है, जनरली सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स से ये इस तरह की खबरें मिस हो जाती हैं। और उसमें खबर यह है कि सरकार ये फैसला करने जा रही है या कर ही लिया है सरकार ने कि जो फॉरेन से पर्यटक आते हैं, जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उनसे आपको मालूम है कि वीजा उनको लेकर के भारत में प्रवेश मिल सकता है। वीजा लेंगे तो वीजा के लिए शुल्क लिया जाता है, उसकी फीस होती है। तो भारत अभी तक जो उनसे वीजा शुल्क लेता था, जो पर्यटन के लिए आते थे, वो काफी बड़ा था। मतलब 80 से 100 डॉलर, उसमें 70 का गुणा कर दीजिए तो पता लगा कि 5,000 से 7,000 रुपए हम उनसे वीजा शुल्क लेते थे। सरकार ने घोषणा की है कि नहीं, जो केवल एक महीने के लिए भारत घूमने आएगा उससे 10 से 25 डॉलर के बीच में लिया जाएगा, यानी कि 700 रुपए से लेकर के आप कह लीजिए कि लगभग 2,500 रुपए तक के आसपास उनसे लिया जाएगा, 2,700 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक का शुल्क लिया जाएगा। ये देखा गया, माना गया है कि जो दूसरे देश हैं जहां पर्यटक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो वीजा शुल्क बहुत कम लेते हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जो वीजा शुल्क लेते ही नहीं। इसमें डेटा दिया हुआ है, मेरे समझ से आपके लिए भी बहुत उपयोगी होगा अगर आप इसे नोट कर लेंगे, कि सिंगापुर एक छोटा सा देश है हमारे एक शहर की तरह, और वहां 1,85,00,000 पर्यटक आते हैं। और थाईलैंड के बारे में आप जानते हैं, वहां 3,80,00,000 पर्यटक साल भर में आते हैं, और हमारे यहां 1,05,00,000, 1,05,00,000। और सरकार ने 2020 तक 2,00,00,000 पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। तो एक नीति सरकार ने जो घोषित की है, जो पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होगी, अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो चूंकि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि सरकार ई वीजा शुल्क कम करने जा रही है या कम कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मित्रों, जनसंख्या के बारे में हम लोग पहले थोड़ी सी बात कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे ने लाल किले से संबोधन में कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण एक तरह से देशभक्ति है। इसको लेकर के बहुत अच्छा एक एडिटोरियल कमेंट बिजनेस स्टैंडर्ड का है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसमें इन्होंने कुछ बहुत ही खूबसूरत बातें बताई हैं, वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। पहला तो यह है कि 2001 की तुलना में 2011 में जो हमारी प्रजनन दर है बहुत कम हुई है। 2001 में जो 3.24 थी वो 2011 में घटकर के 2.53 हो गई है, और ये माना जा रहा है कि 2021 की जब जनगणना होगी तो 2.53 भी घटकर 2.20 हो जाएगी। और याद रखिए कि अगर प्रजनन दर 2.1 हो जाती है तो ये फिर ये जनसंख्या का स्थिरीकरण हो जाता है, मतलब जनसंख्या फिर ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। लेकिन यहां जो जनसंख्या वृद्धि की जो बात की जा रही है वो ये है कि हमें इसे थोड़ा सा और कम करना है, क्योंकि हमारी जो औसत आयु है बढ़ गई है मेडिकल साइंस के कारण। तो हमारी जनसंख्या में वृद्धों की संख्या आगे चल करके प्रतिशत की दृष्टि से ज्यादा होने वाली है, और इसको लेकर के करंट कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसमें जो बात कही गई है कि हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, कश्मीर है और पश्चिम बंगाल है, उनमें जो ये प्रजनन दर है वो खास तौर पर बहुत कम हुई है। कुछ ऐसे अल्पसंख्यक समूह हैं जैसे ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन, इनमें तो जो प्रजनन दर है वो 2.1 से भी कम है। लेकिन दो राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में यह 3 है और बिहार में यह 3.2 है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपकी जानकारी में होने चाहिए ताकि आप अपने उत्तर थोड़े से ठोस तरीके से दे सकें। दोस्तों, आज के करंट कंटेंट में एक बहुत अच्छा आर्टिकल का आपको प्रोवाइड किया गया जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, अपने लिए स्थान मांगती नदियां। इनमें उसमें एक दो पॉइंट बहुत अच्छे हैं, मैं जानबूझ करके उन्हें नहीं बता रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करें और अपने स्तर पर पकड़ें। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है कि न्याय संबंधी दो अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, हम न्यायपालिका की जो कमियां हैं, न्यायपालिका की जो सीमाएं हैं, उनके बारे में अक्सर बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या सच में वो सीमाएं ही न्यायपालिका की बनी रहेंगी, या न्यायपालिका अपने स्तर पर भी कोई कदम उठा सकता है? दरअसल मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे न्यायमूर्ति जस्टिस चंद्रचूड़ रहे हैं, उन्होंने एक सेमिनार में बहुत महत्वपूर्ण बात कही। न्यायमूर्ति जस्टिस चंद्रचूड़, ये रिफरेंस है, रिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। अभी एक जो पहलू खान थे उनकी हत्या के आरोपियों को छोड़ दिया गया, तो उस सेमिनार में उन्होंने कहा था, उनके शब्द में कह रहा हूं, और ये बकायदे आज को दैनिक भास्कर के एडिटोरियल कमेंट में है, मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, आप वहां से नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट कर लीजिएगा। जज के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि उसके समक्ष जिस तरह के सबूत पेश किए जाते हैं उसी के मुताबिक फैसला करना होता है। अक्सर पुलिस की अयोग्यता के कारण या जानबूझकर जांच अपर्याप्त होती है। यह भी देखा गया है कोर्ट की निगरानी में हुई जांच की गुणवत्ता बेहतर होती है। देखिए, पुलिस राज्य सरकार के अंडर में काम करती है, तो अगर सरकार उसी पार्टी की है जिसके खिलाफ आरोप चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि पुलिस अगर दबाव पड़ रहा है उस पर तो जांच में ढिलाई कर देगी और कोर्ट में जाकर के छूट जाएंगे। हमें लगता है कि सही बात है, कोर्ट क्या करे। इसी के अगेंस्ट में दो बहुत बड़े हथियार न्यायालय के पास हैं। अब मैं उन दो हथियारों की चर्चा कर रहा हूं और ये आपके दिमाग में बिल्कुल रच बस जाने चाहिए। पहला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और अपने न्यायालयों से कहा है कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 178 इन ब्रैकेट 8 या 156 इन ब्रैकेट 3, ये रिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार देता है कि पुनर्जांच या जांच के आदेश दे। मतलब न्यायालय का अधिकार है कि अगर वह जांच से संतुष्ट नहीं है, उसको लग रहा है कि कुछ मैनिपुलेशन किया गया है यहां, तो बकायदे फिर से वह जांच का आदेश दे सकता है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार, राइट। अब जो दूसरा हथियार है वो संविधान ने, हमारे संविधान ने न्यायालय को दिया है और मुझे लगता है कि ये तो इससे बड़ा और हथियार कुछ हो ही नहीं सकता। ये है अनुच्छेद 142, रेफरेंस सहित आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 142। इसका शुरू का हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, जो संविधान के अपने ही शब्द हैं। उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। देखिए इसमें क्या क्या कि पूर्ण न्याय करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस, यानी कि अगर न्यायालय को कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसमें न्याय नहीं हो पा रहा है, तो उसको बकायदे उसके बारे में भी आदेश पारित करने का अधिकार है और यह अधिकार संविधान दे रहा है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ करके सुना देता हूं मित्रों, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी, ये मेरा सौभाग्य है कि इसे सुनते हैं। इसमें लिखा हुआ है 142, आर्टिकल 142, द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन मे पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी काज आर मैटर पेंडिंग बिफोर इट। यानी कि कोर्ट को सही पूछिए तो सही सही न्याय करने की गुंजाइश हमारे संविधान ने भी दे रखी है और बकायदे जो अपराध प्रक्रिया संहिता है उसने भी दे रखी है। ये आपकी जानकारी में मुझे लगता है कि होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से दो मित्रों के नाम हैं प्रतीक चंद्र और रविकांत शुक्ला, गोंडा उत्तर प्रदेश से, आपका आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।